हम आज एक से एक चीज के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं। ये कुर्बानी है कि आप दिसंबर की और जनवरी और फरवरी के दिनों में शादियों पे जाते हैं, कुर्बानी रोते हुए जाते हैं। खुशी भी हो रही होती है फिर भी कहते हैं जाना तो पड़ेगा, बीमार है जाना तो होगा। और दूसरा सफर जो मैंने देखा अपने मुल्कों में आके, मरने पे सफर, कोई फौत हो गया सफर, जिंदगी में 5 5 6 6 साल से नहीं मिले होते उन रिश्तों को, वो बीमार थे उनकी आदत को नहीं गए, एक खबर हुई मामा जी फौत हो गए, अब आधी रात को निकले दिन को निकले, धुंध में फंसे सारी रात स्टक रहे, जाना जरूर है। लोग कहेंगे सगा मामू फौत हो गया आई नहीं, और गिले फिर देखिए सगी चची फौत हो गई, सगी खाला फौत हो गई, आई नहीं। मारूफ सफर है कहाँ, इल्म के सफर से हमको मोहब्बत है। आप बुलाइए किसी को, इल्म के लिए चलना है कहीं जाना है, वन टाइम तो शायद कोई आ जाए। अच्छा, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं बदली, प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। याद रखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन को इल्म से सैरी हासिल ही नहीं होती यहाँ तक कि जन्नत में पहुँच जाए। जैसे खाने वाला बिस्यार खोर जो होता है ना, खुश खुराक खूब खाने लगे, वो खाता ही रहता है जब तक डिश ख़त्म ना हो जाए, उसको ये नहीं परवाह कि मेरे पेट के अंदर जगह है नहीं, बस वो कहता है इधर अभी अच्छी बोटियाँ दिख रही हैं, ये भी मेरे ही अंदर जानी चाहिए। तो इल्म जन्नत का रास्ता दिखाता है। मैं आज वो हदीसें नहीं बयान करने लगी, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी सोच देने आई हूँ। अगर इसी स्पीड से और इसी तेज़ी से हम इसी रास्ते पे चलते रहे, हम गुम हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि नाम भी ना होगा तुम्हारा दास्तानों में। किस तेज़ी से हमने इल्म के चिराग गुल कर दिए, हमने आज इल्म से ताल्लुक़ तोड़ दिए। किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि इल्म कब तक हासिल करना चाहिए, कहने लगे जब तक ज़िंदगी है। हमारे कितना मारूफ है, बस 20 साल हो गए इल्म ख़त्म, अब चलो जी कारोबार कर, मर्दों की बात है जॉब करते हैं। ज़िंदगी के आखिरी दम तक सफ़र इल्म, और यहाँ मैं अपनी नज़र से दोनों उलूम को इकट्ठा बोल रही हूँ, वरना अगर असलाफ को देखें तो वो दीन का इल्म सीखने के लिए कैसे आते थे। सैयद बिन मुसैब एक नाम है, बड़ा मारूफ नाम है, कहते हैं कि मैं एक हदीस के लिए कई दिन और कई रात सफ़र करता था। आपको अपने शहर के दूसरे हिस्से में जाना पड़ जाए ना, कहते हैं नहीं ये जगह हमसे बड़ी दूर है, जैसे आज का ये आपका वेन्यू, मेरा गुमान है आप सारे इधर के ही लोग होंगे, ऐसे ही है। यानी आज हम किसी शहर में अगर कोई एक लेक्चर भी हो जाए, कोई हमें कह दे वहाँ खैर होगी, तो अमूमन करीब कहते हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं करती, वो तो 8 8 घंटों से भी आ जाते हैं, मैं पब्लिक की बात करती हूँ। यानी हमारे लिए 1 घंटा भी बहुत बड़ी चीज़ है, गाड़ियाँ ड्राइवर हमारे दरवाज़ों पे होते हैं। नहीं, आज काम बहुत है। असल में आज मैंने बाज़ार जाना था, आज मेरी कोई अपॉइंटमेंट है, और इस तरह से। तो सैयद बिन मुसैब कहते हैं एक हदीस के लिए कई दिन और कई रात सफ़र करता था। ये मुसलमानों के उरूज की दास्तानें थीं, इल्म की शम्मा से उनको मोहब्बत थी। आज आप इल्म की शम्मा से मोहब्बत करें, 10 साल नहीं लगेंगे, आप दुनिया के सुपर पावर्स में शामिल होंगे। वही कौमें तरक्की करती हैं दुनिया में भी जिनको इल्म की शम्मा से मोहब्बत होती है। आज देखिए जापान का नाम, जर्मनी का नाम, यहाँ बहुत ज़्यादा इल्म का शौक है। आप जर्मनी में बसों ट्रेनों में सफ़र करें ना, हर बंदे के हाथ में बुक दिखती है। अब तो खैर सेलफोन ने हमारे ड्राइवरों तक को बिज़ी कर दिया ना, लेकिन कब आखिरी किताब कोई पढ़ी थी हमने, दिन ब दिन किताबें ना पैद हो रही हैं। हम व्हाट्सएप की पोस्ट को इल्म कहने लग गए, हम इंस्टाग्राम के मैसेजेस को, और वो टिकटॉक की 1 मिनट के अंडर की वीडियो को इल्म कहने लगे। बहुत पढ़ती हूँ मैं, मुझे बहुत आता है। क्या है आपके इंस्टीट्यूट का नाम? व्हाट्सएप। कुछ के इंस्टीट्यूट का नाम कोई ऐसा ही चैनल है। नहीं पता आपको किसकी बात आप आगे कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहले उस्ताद के बारे में कंफर्म करते थे कि ये सक़ा है, ये कुरान सुन्नत वाला है, फिर उसकी बात सुनते थे। ऐसे थोड़ी है जाकर आप चीज़ खरीद के ले आए और बाद में पता चले नकली थी जाली थी। आज बातें पहले सुन के कहते ये कौन है, ये किसकी बात है, फुलां बातें बड़ी अच्छी करते हैं, फुलां का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है, दिस दैट ई बी सी डी सी। लेकिन वो सफ़र निरा, दिन ब दिन हम इल्म की शम्मा से मोहब्बत तो क्या करनी उसको बुझाने वाले हो गए। दुनिया का इल्म ही नहीं बच्चे करते यूज़। आप देखिए कि सिर्फ पढ़ना है, इम्तिहान देने के लिए, नंबर लाने के लिए। आज स्कूल और कॉलेजेस माफिया बन गए हैं, खरीदे जाते हैं आपको पता है स्टूडेंट्स। टॉपर्स को अपने स्कूल कॉलेज में जगह देने के लिए ऐसे ऑफर्स दी जाती है जैसे शायद कभी किसी को किसी सोशलाइजिंग की दावत दी जाती हो, ताकि अगले साल हमारे स्कूल के फ्रंट पेज पे इस बच्चे की तस्वीर लग जाए कि ये टॉप कर रहा। क्या बातें हैं, आप जब इस दुनिया में निकलेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह एक किसी का कॉल, इमाम शाबी बहुत बड़े इमाम थे, कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुल्क शाम से, यानी शाम सीरिया जिसको आज कहते हैं, मुल्क शाम के आखिर से चलकर यमन के आखिर तक, यानी दो इंतहाएं हैं, महज इसलिए सफ़र करे कि इल्म की एक बात सुने, तो मेरे नज़दीक इसका सफ़र ज़ाया नहीं हुआ। अजीब नहीं लगती बातें, लोग कहते घर बैठ के भी तो सुन सकते हैं। घर बैठ के आप क्या सुनते हैं, साथ तो बातें कर रहे होते हैं। घर बैठ के सुनिए उस तरह जैसे कुरान नज़ूल हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, दैट इज़ द बेस्ट वे। लेकिन बीच में फ़ोन भी सुन रहे हैं हम, बीच में हम खाने भी पका रहे हैं, और बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह या म्यूज़िक की तरह कुरान चल रहा है या लेक्चर चल रहे हैं। नहीं है मोहब्बत, और जब ये मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर इसकी एक ही मिसाल है, फिर खूब से खूब और लेना है, और लेना है, और लेना है। अबू दर्दा का नाम बहुत मारूफ है, सहाबी थे, कहते हैं कि जो कोई तलबे इल्म के सफ़र को जिहाद नहीं समझता, इसकी अक़ल में नक्स है, यानी ये जिहाद है। इसी तरह इब्ने अबी गस्सान कहते हैं, आदमी उस वक़्त तक आलिम है जब तक तालिब इल्म है, जब तालिब इल्मी को खैर बात कह दे तो जाहिल है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े उस्ताद थे, इनके बारे में अबू उसामा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक से ज़्यादा मुल्क दर मुल्क घूम कर तलबे इल्म करने वाला नहीं देखा। यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे इल्म लेने, और वो कोई जहाज़ों में थोड़ी जाते थे, उनकी बेहतरीन गाड़ियाँ थोड़ी थी, चलते थे कभी घोड़ों पे कभी कुछ। इमाम ज़ाहबी जब पहली मरतबा तलबे इल्म के लिए निकले तो 7 साल तक सफ़र में ही रहे, बहरीन से मिस्र, फिर रमला, वहाँ से तरतूस का सफ़र पैदल किया। इस वक्त उनकी उम्र 20 साल की थी। आज है 20 साल का बच्चा इस तरह का शौक रखने वाला, थोड़ा सा समझिए। और ये जो आप कहते हैं ना हमारे असलाफ सीखते थे, तो यकीन कीजिए सिर्फ कुरान नहीं सुन रहे होते थे, हदीस नहीं, पूरा इल्म लेते थे, दीन का भी लेते थे, दुनिया का इल्म भी साथ ही चलता था। हाँ, गालिब दीन का इल्म था। हमने ये जो दीन दुनिया को अलग कर दिया ना, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि लोगों के पास वक्त ही नहीं रहा। हम दुनिया का इल्म पाने के लिए हांप रहे हैं, कांप रहे हैं, आला यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। और दीन वो तो पढ़ लिया था, बचपन में पढ़ लिया था कुरान, अब दोबारा क्या पढ़ना। इब्ने मकरी हैं, कहते हैं कि मैंने एक नुस्खे की खातिर 70 मंजिल का सफ़र तय किया। यानी एक नुस्खा मीन एक टॉपिक, एक आर्टिकल लेने के लिए। आखिर क्यों, ये है इल्म की शम्मा से मोहब्बत हो मुझको। इन बुज़ुर्गों के दिल में शौके इल्म की ऐसी बेताबी थी जिनको किसी शहर या मुल्क में करार लेने ही नहीं देती थी। वो सुन लेते थे, उधर कोई उस आलिम है, उधर कोई उस्ताद है, उधर चल पड़ते थे। जैसे आज के दौर में आपको पता चल जाए कि फलां चीज़ अमेरिका में बड़ी अच्छी है, फलां यूरोप में अच्छी है, तो जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चों को ले कर छुट्टियों में चले जाते हैं। ये सारी फ्रेंचाइज फूड की चेन्स पाकिस्तान में ऐसी थोड़ी आ गई हैं, कभी वहाँ गए खाया तो आ गई। या अलफतेह जैसे बड़े बड़े स्टोर जिसमें एक एक सीरियल 2-2 हज़ार रुपये का मिल रहा है, ये क्यों आया इधर? ये हमारी बाहर की दुनिया से वाबस्तगियों की वजह से आया। शौक बहुत है। वर्ल्ड टूर का नाम हमारे भी यहाँ बड़ा मारूफ है। छुट्टियों में बच्चों को डिज्नीलैंड दिखाना हमारे भी यहाँ बड़ा मारूफ है। लेकिन क्या इल्म है? यकीन कीजिए मुल्क तो मुल्क हैं, वो एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म में इल्म हासिल करने के लिए जाते थे। देखिए हमारे मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान, इधर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को फॉलो करने वाली अक्सरियत है, ऐसी है ना, अक्सर लोग खुद को हनफी कहते हैं। आपको पता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उनकी जिंदगी कैसी थी, हमने तो वो भी नहीं पढ़ी। हक भी नहीं हमें उनके मुकल्लद होने का या उनके नाम से नस्बत जोड़ने का। आप उनके हालात ज़िंदगी पढ़िए, वहाँ लिखा हुआ है कि इनके एक शागिर्द थे इमाम अबू यूसुफ, उनको इनकी वालदा ने कस्बे माश के लिए भेजा कि जाओ कुछ कमाई करके लाओ। खैर, ये कुछ ना कुछ कमाने के लिए मेहनत करते रहे। माँ का मशवरा क्या था कि कपड़े धोने सीख लोगे तो चलो गुजर बसर हो जाएगी। ये बच्चा जो घर से कमाई करने निकला, इमाम अबू हनीफा का दर्स सुनने पहुँच गया किसी भी तरह से, तो उनको इल्म हासिल करने का शौक़ हुआ। माँ का इसरार क्या था कि मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ ताकि पैसे आए घर में। इनका दिल था कि मैं इल्म हासिल करूँ और आलिम बनूँ। इन्होंने सारी बात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को सुना दी। आपको पता है कि उस्ताद जो होता है ना, वो अपने शागिर्दों को पढ़ लेता है। ये लिख ले जुमला, उस्ताद किताबें पढ़ाता है और शागिर्दों को पढ़ता है। ऐसे नहीं मेहनत करता कोई। बंजर ज़मीन पे कौन सा किसान मेहनत करेगा, कोई वहाँ जाकर हल चलाएगा, बेकार। एक किसान जो है वो नहीं बंजर ज़मीन पे हल चलाता तो उस्ताद क्यों इतना वक्त लगाए। उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ते हैं, फिर जो उनमें उनको बड़े कीमती लगते हैं ना, फिर उनके पीछे पढ़ जाते हैं कि आपको नहीं छोड़ना, दुआ करें हम वो हों। तो खैर, जब इन्होंने सुना कि ये तो बहुत ही अच्छा है और सीखना चाहता है, तो कहने लगे कि आप रोज़ मेरे दर्स में आया करें, मैं आपको इधर आने का कुछ वजीफ़ा दे दूंगा, महाना वजीफ़ा, स्कॉलरशिप कह लें, कुछ पैसे दे दिया करूँगा, वो आप अपनी वालदा को भेज दीजिएगा। माँ समझ लेगी कि बेटा जॉब पर लग गया और आप इल्म ले लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। इमाम यूसुफ सारा महीना उनकी मजलिस में, दर्स की महफिल में आते, इल्म सीखते, और आखिर में महीने के जो एंड पे वो बात करते। तो बहरहाल उन्होंने क्या किया, माँ को पता चला कि ये तो कमा रहा है, हालांकि वो इल्म हासिल कर रहा था। अब क्या हुआ, आपको पता है इमाम अबू यूसुफ का क्या नाम है? आज जितनी फ़िक्र हनफ़ी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं हनफ़ी मदारस में, उसमें अक्सर किताबें इमाम अबू यूसुफ की। अल्लाह अकबर। एक दिन माँ को पता चल गया कि बेटा मेहनत तो नहीं कर रहा, ये तो इल्म हासिल कर रहा है, तो बड़ा गुस्से में आ गई। बेटे को समझाया कि देखो, तुम्हारा बाप फौत हो चुका है, घर में कोई दूसरा मर्द नहीं जो कमाए, तुम्हारा ये उस्ताद कब तक तुम्हें वजीफ़ा देगा, तो तुम कुछ हुनर हासिल करो, काम करो। तो उन्होंने जाकर फिर अपनी ये बात अपने उस्ताद को सुना दी कि मेरी माँ की तो ये ख्वाहिश है और दिस एंड दैट। तो क्या हुआ, इमाम यूसुफ अपनी वालदा को लेकर इमाम अबू हनीफा के पास आ गए। अब जब माँ इनके उस्ताद के पास आई तो माँ ने भी सुना दिया ये सारा कुछ कि भाई मैं इसलिए इसको कह रही हूँ, ये वो जो भी कहानी हो सकती है आप उसको खुद ही जोड़ लीजिए। तो जब ये सारी कहानियाँ सुन ली इमाम अबू यूसुफ की माँ से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने, तो कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हारे बेटे को जो सिखा रहा हूँ ना, बाद में इसको इससे पैसे मिल जाएंगे, ये भी एक फ़न है। अब ये फ़न जो है ये कल इसको कुछ ना कुछ बना देगा। लेकिन माँ को बात समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या उस्ताद बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने बात थोड़ी सी मजाक में डाल दी कि एक दिन तुम्हारा बेटा कुछ कमा लेगा इसी इल्म से जो मैं हासिल कर रहा हूँ। खैर, कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से पूरा इल्म ले लिया जो वो दे रहे थे और उस शहर का बहुत बड़ा इमाम बन गया। इर्द गिर्द दूर नज़दीक इनके इल्म की शोहरत फैल गई कि इमाम अबू हनीफा का एक शागिर्द है जिसमें ये खूबियाँ और वो खूबियाँ। इतने में इनकी शोहरत उस वक्त के हुक्मरान तक पहुँच गई। याद रखिए, इल्म आपकी शोहरत बन जाता है। आपके अंदर अगर कोई खूबी है ना, तो सो जाए जाके, अल्लाह आपको वहाँ पहुँचा देगा इस इल्म की वजह से जहाँ पैसे वाले नहीं पहुँच सकते। इल्म कितनी शान है। एक कॉल भी है कि इल्म अपने साहिब की शान को बढ़ा देता है। खैर, उस वक्त के जो काजी थे उन्होंने इमाम अबू हनीफा को काजीउल कुजा, जिसको आज का जज कह लीजिए, जज का ओहदा पेश किया कि आप इस शहर के जज बन जाइए, मुकदमात का फैसला कीजिए अदालत में जाकर। इधर ने कहा कि भाई मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं इल्म का काम करता हूँ, पढ़ता पढ़ाता हूँ, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरा एक शागिर्द रशीद है और उसका नाम इमाम अबू यूसुफ है, अगर आप उनको ये अहदा दे दें तो मेरा ख्याल है कि वो कबूल कर लेंगे। और आपको पता है फिर इमाम अबू यूसुफ अपने वक्त के चीफ जस्टिस बन गए, काजियुल कुजा चीफ चीफ जस्टिस है। पूरे मुल्क में उनकी मकबूलियत हो गई, शोहरत मिल गई, फेमस हो गए। हुकूमत वक्त ने ये जिम्मा लिया कि काम के दौरान खाने का बंदोबस्त हुकूमत की तरफ से होगा, उनके खर्च अखराजात सारा कुछ कर करा कर, लंबी कहानी है, लेकिन जिस बात का माँ को डर था अल्लाह ने उससे उलट उस बच्चे को इल्म से वो दे दिया जो वैसे नहीं मिलता। कहानियाँ तो मेरे पास बेशुमार हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप और मैं ये तो देखें कि जो जनरेशन इस वक्त आज मेरे आपके सामने है, इन बच्चों को हम क्या बनाकर छोड़ेंगे। व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड। जब आपने अपने बच्चे को दुनिया की तालीम दी ना, अच्छी थी, लेकिन साथ दीन की नहीं दी तो वो आपकी आंखों की ठंडक भी नहीं बने। चलिए वो कहते हैं ना, तो मेरा नहीं बनता अपना तो बन। तो जब हमारे बच्चे 2+2 and 1 into 1 और ए बी सी डी और हमटी डमटी सचिन वॉल ये सारा कुछ सुन सुना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद वो हमारे हक में कैसे हैं। घर घर जाकर घूम के देख लीजिए, बच्चे जिस्मानी तौर पे हमारे पास हैं लेकिन रूहानी तौर पे अगवा हो चुके हैं। हमारे बच्चों को हमारे ही घरों से कोई अगवा करके ले गया, सोच नहीं मिलती, पसंद नापसंद नहीं मिलती, लाइफस्टाइल नहीं मिलता। शादियों का जो मैंने तذکرہ किया, कोई उनका भी कोज में कंसर्न हो तो वो आपके साथ जाएंगे, अमूमन वो तो अब आपके साथ शादी में भी नहीं जाना पसंद करते। शहर में भी जाएं, वहाँ हमारे साथ का कोई नहीं, मेरी अपनी बात है, मैं घर में रहूँगा। यानी ज़हनी तौर पर हम अकेले हो गए। चार चार पाँच पाँच बच्चों के माँ बाप को मैंने आहें भरते देखा है, वेवलेंथ नहीं मिलती। जो स्टाइल उन्होंने देखा उसमें मदर डे था, साल में एक दिन बड़ा खूबसूरत सा कप आई लव मॉम लिखा हुआ, खूबसूरत सी 200-400 रुपये की पैकिंग में लिपटा हुआ आपको पेश होगा, बिकॉज टुडे इज़ मदर डे। कल नहीं वो देंगे आपको, आज देंगे क्योंकि कल मदर डे नहीं था, सेम थिंग फादर डे और सो ऑन, दूसरी छोटी बड़ी बातें जिसको भी आप कहते हैं। हमने अगर अपनी नस्लों को उस सच्चे इल्म के साथ ना जोड़ा तो ये दुनियावी इल्म उनको हमसे और दूर कर देगा। लिख के रख लीजिए। एक जगह मैं नॉर्वे में पार्क में थी, हम भी वॉक के लिए गए, तो एक आंटी जा टाइप की औरत थी और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, तो सलाम दुआ हुई, दो बच्चे थे बल्कि, तो मैंने पूछा कि ये कौन है, कहने लगी पोता और पोती है, लाहौर से मंगवाई गई थी दादी पोते और पोती की टेक केयर करने के लिए, क्योंकि वहाँ बेबी सिटिंग बहुत महंगी है। तो मैंने कहा इनके पेरेंट्स किधर है, कहती ज़्यादा ही पढ़ा दिया उनको। मुझे वो उसका जुमला असल में याद आया तो मैं आपको बताने के लिए ये बात सुनाई है। कहने लगी बहू भी काम पे चली जाती है, बेटा भी चला जाता है, ये बच्चे अकेले घर में रहते थे, अब तो बड़े हो रहे हैं, अब स्कूल भी हो गया, तो स्पेशली मुझे पाकिस्तान से बुलवाया गया, मेरा इधर दिल नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान में मेरे अपने घर में कितनी मासियाँ, तो यहाँ इन बच्चों की पोटी भी मुझे ही साफ करनी पड़ती है। लेकिन फिर हम पे रोक डालते हैं बच्चे के, आपको हमसे प्यार नहीं है, हमारे बच्चों से प्यार नहीं है, आप इनकी अच्छी तरबियत करें। तो अम्मा अब्बा गए हैं सुबह से कुछ और करने और उनका रंग रूप और उनका हाल हुलिया बता रहा है कि अभी उनकी भी तरबियत की ज़रूरत है। लेकिन अक्सर लोग अपने माँ बाप को मिसयूज़ करते हैं कि अब आप हमें तो पाल दिया, अब इनको भी पालिए। दुनिया के मामले में इतने एम्बिशियस, हल में मज़ीद अल्हाक मुतकासर और आखरत कॉन्टेंट। जी सब्र शुक्र से जितनी नमाजें हैं बस उतनी काफ़ी है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में भी खुशी आए तो इल्म के दीप जलाइए। अगर आप और मैं अपने इस शहर में, सियालकोट मुझे बहुत पसंद है शहर, सारे शहर बहुत अच्छे हैं, बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान हमारा, लेकिन जितना ज़्यादा आप खुद अपने आप को और अपने बच्चों को इस कुरान के हकीकी इल्म से जोड़ेंगे, उतना आपकी ज़िंदगियाँ खूबसूरत होंगी। अगर जो बातें मैंने की, अगर आपके घर की ऐसी कहानी नहीं, तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अमूमियत की बात की है कि आज अमूमी तौर पे उम्मत मुस्लिमा को और उनकी नस्लों को दीन के इल्म का शौक़ कम हो गया। पूरा है कि नहीं, कम हुआ, कितना हुआ, लेकिन कुछ कमी है। लेकिन याद रखिए कि इल्म सिर्फ किताबों के बोझ का नाम नहीं है, 2+2 याद करने और पहाड़े पढ़ने और पूरे नंबर लेने का नाम नहीं है। जब तक दीन का इल्म नहीं मिलता, जब तक रब की मार्फत नहीं मिलती, नहीं होता। अगर आप देखें ना कि इल्म आइन लामीम, इल्म और आइन की जेर को जबर कर दे अलम, अलम झंडे को कहते हैं उर्दू में, हम बोलते हैं ना अलम बरदारी, रस्म अलम बरदारी, अलम झंडा, बरदारी यानी उसको पकड़ लिया, ऊंचा कर दिया। इल्म झंडा है, जिसको सच्चा हकीकी इल्म मिल जाता है ना, नंबर एक आपको अपनी ज़ात का इदराक मिलेगा। इल्म कहते किसी चीज़ की हकीकत को पा लेना, जान जाना। फिर सिफात का इदराक, आपके अपने अंदर इतनी खूबियाँ छुपी होती हैं आपको पता ही नहीं, आप ना अल्लाह को पहचान पाते हैं ना खुद को पहचान पाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इंशाल्लाह इल्म के साथ जुड़ते हैं, आप खुश रहते हैं। आपको अगर मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स देकर ऐसी सिर्फ हिंट्स दूंगी, इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को रिपीट करेंगे किसी मौके पे, जिसमें हमारे पास इसकी बहुत खूबसूरत स्लाइड्स और बहुत कुछ है, लेकिन आज के हालात के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो बात करवाई वो भी बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ी, क्या किया, कैसे करना है, क्यों करना है। तो इल्म के साथ जब आपका ताल्लुक़ जुड़ जाता है ना, तो वो बात है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आपको सर्व कर रहे हैं, आप लोग भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर फ़िलहाल आपके पास कोई ऑन साइट का अरेंजमेंट ना हो पाए, तो ऑनलाइन पे हमारे कोर्सेज़ चलते हैं। एक रिसेंटली हमने 1 वीक कोर्स शुरू किया है हुज्जतुल्लाहुल बालिगा, सिर्फ एक दिन हफ्ते में, 2.5, पूरी लाइव टीचर्स के साथ कोर्स है, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ देखेंगे। कोई तलब पैदा कीजिए, कोई ख्वाहिश कीजिए, और अगर इधर आप कहीं सीख रहे हैं, कोई और ग्रुप है जो आपको कुरान सुनना सिखा रहा है, तो वही सीखिए। हमें कोई शौक नहीं है कि आप सारे हमारे ही पास आए। हाँ, अगर जिसकी बात आपको समझ आ जाए, जिसकी बात दिल में उतरे और वो बात भी सही हक़ की करने अलाओ, तो ज़रूर इल्म लीजिए। इल्म के दीप अगर नहीं जलाएंगे तो हमारी कब्रों में रोशनी नहीं होगी। आपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों के इल्म के साथ लेकर चलना है हमने। तो इल्म हमें सबसे पहले तो अल्लाह और रसूल की मार्फत देता है, हमें पता चल जाता है कि अल्लाह और रसूल है क्या। ये जो आपने मैंने शुरू से नाम सुना हुआ है ना अल्लाह और रसूल का, ये एक इंशाल्लाह ताला काम आएगा। लेकिन जो हकीकी मार्फत कुरान को सीख कर होती है ना, वो वैसे नहीं हो सकती। और आप महसूस करते हैं जब ये चीज़ें लेते हैं कि वाकई मेरे मालिक, तूने मुझे अगर इल्म के बग़ैर दुनिया से भेज दिया होता, तो मैं तो बिल्कुल भी किसी काम की ना होती और कुछ भी उससे मुझे ना मिलता। फिर जो दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ना इल्म से, आपको अपनी ज़ात की मार्फत होती है। आपको तो है कि आप अल्लाह ताला का एक मास्टरपीस हैं। लक़द ख़लक़ना अल-इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहात। ऐसी आयतें पढ़ते हैं ना आप, बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए। सच्चा इल्म आपको अपनी कदर याद करा देता है। तीसरी चीज़ अगर आपको बताऊँ ना, जब आपके उस इल्म आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर आप अपने रिस्क के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आप ये नहीं करते चलो जो भी है, जैसे भी है, वैसे भी है, ये है। और एक बात और कह दूँ कि इल्म के बाद दिल का सुकून मिलेगा आपको। इल्म रोशनी है, इल्म चिराग है। ये कैसे हो सकता है कि रोशनी हो और फिर अंधेरे हों आपके इर्द गिर्द, ये नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह हमने अपनी नस्लों को एक ऐसे खूबसूरत एंड पर लेकर आना है कि जो दुनिया में हमारी मौजूदगी में भी और हमारे बाद भी ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، جس میں علم ینتفع بعدہ ہو، وہ علم جس سے اس کے بعد نفع حاصل کیا جائے، ولد صالح یدعو له، وہ اولاد جو نیک ہو جو اس کے لیے بعد میں دعا کرے، اور صدقتن جاریتن، صدقہ جاریہ۔ یہ تین چیزیں اکٹھی کر دی سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے۔ الحمدللہ جو دعوت آپ کو آج دے رہے ہیں، یہ اس میں ان تینوں ہی چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ علم کا کام ہی ہمارا 24 گھنٹے، آپ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا، امریکہ سے یہ شروع ہوا تھا اور یورپ کے رستے پاکستان پہنچا، یعنی الٹ ہونا چاہیے تھا۔ عموماً تو ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان سے دین کا کام شروع کر کے امریکہ تک جانا تھا، لیکن اللہ کا حکم جو اللہ نے کروانا تھا کروایا، کہ اس وقت مختلف طرف ہے، لیکن اس کی جو بیس تھی، جو روٹ تھی، وہ امریکہ میں تھی۔ وہاں سے 10-12 سال کے کام کے بعد اللہ یورپ لے آیا ہمیں، وہاں پھر یورپ میں ناروے، پیرس، یو کے، جرمنی اور ارد گرد آئرلینڈ، یعنی ان جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی کندیلیں چلتی گئیں، اور 2018 جو آپ سے بہت قریب ہے ابھی، اس میں ہم پاکستان میں اس کا ایک باضابطہ آغاز کر سکے۔ اس سے پہلے الحمدللہ یہ سیالکوٹ شہر میں ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے، ہمارے ساتھی ہیں بہت اچھے، تو انہوں نے ہمارے لیے اس چیز کو پسند کیا کہ پاکستان میں بھی یہ کام ہونا چاہیے۔ تو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، ڈگری کالج کی بیک پہ ایک برینڈ نیو فرام دا اسکریچ کہہ لیجیے کہ گراؤنڈ سے شروع کر کے 3-سٹوری مدرسہ بنایا گیا، کہ جس میں بچوں کو دین سکھایا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو آگے لے کر چلیں۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے الحمدللہ، آج بھی وہاں یہ کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن ابھی اس میں آپ سب کی ضرورت ہے۔ کس طرح؟ پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں، پیسہ نہیں چاہیے ہمیں۔ کیا کرنا ہے پیسہ لے کر؟ آپ کا انوالومنٹ، آپ کا انٹریکشن چاہیے۔ آپ میں سے کسی کے پاس اچھا علم ہے، آپ میں کوئی حافظہ ہیں، آپ میں سے کسی نے دین کا علم سیکھا ہے، یعنی ہمیں نفری چاہیے۔ انسانوں کے ذریعے کام ہوتے ہیں، اچھے ٹیچرز، اچھے اسٹوڈنٹ اور جو ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ لوگ علم سیکھنے والے بن جائیں، یعنی سیکھ سکتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے بن جائیں، سکھانے والے ہیں تو آئیے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے باقی سسٹرز بھی ہیں باہر سے جو آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں، اس کو ہم البرکہ کہتے ہیں، نام ایک برکت کا اللہ نے دیا ہوا، اسی کے انڈر یہ سیالکوٹ کا پروجیکٹ بھی آتا ہے الحمدللہ۔ اسی کے اندر ہم نے جوہر آباد میں 2018 میں جو سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ نے اس میں اپنی شان دکھائی ہے اور آگے بھی دکھاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم بہت اچھی اچھی باتیں اور بھی سنتے رہیں گے اس کے بعد۔ آج ایک ہم ویسے ہی اپنا آن لائن پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں، اور میں اپنی زبان سے کہوں کہ سیالکوٹ کا یہ درس آج آپ لوگوں کے سامنے اس کو کرنا، یہ میری زبان سے آج فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے اناؤنس ہونے لگا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ سے بالکل میرا لے 45 منٹ دور گوجرانوالہ، گوجرانوالہ میں سرفراز کالونی میں ایک بہت ہی چھوٹے سے گھر سے دین کا کام شروع ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے۔ اللہ نے برکت دی، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہوتا ہے، تو جگہ بہت تنگ تھی، تو بہت ضرورت تھی کہ اس کو بڑا کیا جائے۔ ایک طرف یہ سیالکوٹ کا مدرسہ دکھتا ہے، جو مدرسہ تو ہے لیکن ابھی بہت فل فلج کام نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر میں خود صاف بات کہہ دیتی ہوں، میں کیوں آپ سے ایسی باتیں کہوں جس سے آپ سوچیں کہ بلڈنگ بہت پیاری ہے، جگہ سب کچھ اچھا آپ کو لگے گا، لیکن یہ کہ ابھی وہاں آپ لوگوں کے ان پٹ کی بہت ضرورت ہے۔ جب کام ہوگا تو پھر باقی بھی ہوگا۔ تو وہ جگہ تنگ تھی، اتنی تنگ تھی کہ میں جب بھی پاکستان آتی تھی، میرا دل کرتا تھا میں پہیے لگا کر یہ سیالکوٹ کا مدرسہ گجران لے جاؤں، کیونکہ وہاں کام کرنے والے اور طلب بہت تھی۔ لیکن اللہ نے الحمدللہ ہمارے لیے وہاں بھی محرومی نہیں رکھی۔ تو آپ کے لیے آج ایک بس ایک خوبصورت سی خبر شیئر کرتی ہوں کہ وہ جو مدرسہ تھا اس کے ساتھ بالکل خالی پلاٹ تھا، تو جو ساتھی وہاں کام کرتے ہیں ان کی بڑی دل کی خواہش تھی کہ یہ خالی پلاٹ لے کر اسی جگہ کو وسعت دے دی جائے، تاکہ وہاں ہم کچھ کھل کے آرام سے کام کر سکیں۔ اللہ نے وہ پلاٹ تو نہ دیا، وہی پلاٹ ہی لینے گئے تھے، اسی گلی میں دوسری طرف ایک بڑا بنایا گھر جو بند پڑا تھا، کسی نے کہا کہ آپ لے کے بنائیں گے کتنا ٹائم لگے گا، اور واقعی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں تھوڑے سے دنوں کی نیگوسیشن سے وہ گھر الحمدللہ ایکوائر کر لیا، اور پھر وہاں رمضان سے پہلے اپنی کلاسز کو جوائن کرانا ہے۔ आप में से कोई भी, देखिए ये कोई मैं चंदे के लिए नहीं आपको कह रही, ना मुझे अच्छा लगता, ना हमने कभी पैसों के लिए भीख मांगी है, अल्लाह के बंदे देने वाले भी हैं लेने वाले भी हैं, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपका दिल करता है वहाँ आपका कोई हिस्सा डले, आप उसके अंदर कोई मनी से फंडिंग में हिस्सा, उधर तो पैसे की ज़रूरत है, वो गरीब बस्ती है, इतने गरीब फीस भी नहीं दे पाते बच्चे, 200-200 रुपये फीस है शायद, वो भी नहीं देते, और इसीलिए शायद वहाँ बरकत इतनी है कि काम इखलास के साथ हो रहा है और उधर दुनियावी तालीम भी उसी स्कूल में दोनों को जमा भी किया गया है। तो बहरहाल ये मैंने तो आज ऑनलाइन वालों के लिए ये करना ही था, तो आपके सामने भी किया है, तो बहुत छोटी सी हमारे सब के लिए तो इतनी छोटी वो रकम हो सकती है कि शायद दो लोग ही मिल के कहें हम पूरा मदरसा ही आपको ख़रीद देते हैं, एक घर कितने का होगा एक ऐसी बस्ती में। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर आप में से कोई मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो सिस्टर फरहत मौजूद हैं इधर, उनसे बात करें, और इसका लिंक आज रिलीज़ होना है मेरे इस मैसेज के साथ, वेबसाइट पर पेज है, उसकी पिक्चर्स हैं, उसका बैंक अकाउंट है, अगर आप कुछ भी चाहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला सब की कोशिशों को कबूल करे, जिन्होंने भी एफ़र्ट की, जो आप आए जो बैठे, तो अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, मुझसे भी राज़ी हो, और अल्लाह हमें इखलास दे, अल्लाह की नज़रों में हमारा कुछ मुकाम बन जाए, और अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन की रसवाई से बचाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वतूब इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, वतूब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، یا اللہ ہماری کمی بیشیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا، یا اللہ ہمیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم لینے والا بنا، یا اللہ امام ابو یوسف کی طرح ہمیں دین کے علم سے ہی ہماری بہترین دنیا بھی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم آج علم کی شمع جلانے والے بن جائیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی علم سے محبت ہو، ہمیں صرف ان کو دنیا کا غلام نہ بنانے والوں میں شامل کر، یا اللہ ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کی چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے والے بنے، اور یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری محبت اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کر سکیں، یہ دین کا علم ہمیں وہ عزت عطا فرما دے کہ جو تو واقعی وعدے کرتا ہے، اور یا اللہ ہمارے بچے اس دنیا کے امام بن جائیں، اس دنیا کے خلیفہ بھی بن جائے، یا اللہ جس طرح دنیا کی تعلیم ضروری ہے اس طرح دین کی بھی ضروری ہے، یہ ہمارے سانس کی طرح ہے، یا اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت دے، جو فوت ہو گئے ان کو، اور یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل دے، یا اللہ جانے والے جا جا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے بھی پاس وقت کم ہے اور وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، جو دلوں میں رکھے بیٹھے ان کی وہ دعائیں بھی قبول فرمائے، اور جنہوں نے بھی اہتمام کیا اس جگہ کا، جو بھی اس کا ذریعہ بنے، یا اللہ ان کو اپنے اور دوسروں کے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ بنا لے اور قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، امين ثم امين، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔